श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्यवचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले अध्ययन में हमने प्रधान पुरुष अर्थात मुखिया के पाप, साधारण लोगों के पाप एवं पाप बलि के नियम व विधान को देखा था। मित्रों, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और अध्याय 5 में हम दोष बलि की विधि एवं पाप कर्म को देखेंगे। आइए हम इससे पहले कि इस वचन में जाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, इस बलि को और अधिकाई से जानना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की सहायता और मदद करें, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करें, ताकि जो कुछ भी आज हम अध्ययन करते हैं हर एक के जीवन के लिए आत्मिक आशीष का कारण ठहर सके। जो हमारे भाई निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, चिंता में हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारे आज का विषय है दोष बलि की विधि या पाप कर्म। अनेक व्याख्याता इस अध्याय के 13 पद को पाप बलि का एक भाग मानते हैं। इसका न्यायोचित होना ठीक भी है, क्योंकि पद 6 व 7 में पाप शब्द का अनुवाद दोष और उसे उसके दोष के लिए ही होना चाहिए करके अनुवाद किया गया है। 6 और 7 और 11 पदों में दोष के लिए ही पाप बलि की जरूरत है, क्योंकि पाप का कार्य पाप के स्वभाव के कारण ही उत्पन्न है। सारे पाप का स्रोत तो वही है, मुझे और आपको यह आदम से विरासत में मिला है। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर व उसके फल पर भी पड़ना चाहिए। मित्रों, इस वार्तालाप में हम इस संपूर्ण अध्याय को दोष बलि की दृष्टि से देखेंगे। शब्द ट्रेसपास का मतलब केजे अनुवाद में वही है जो वर्तमान में समझा जाता है। हम सभी बिना आज्ञा अंदर आना के संकेत को समझते हैं। इसका अर्थ हमें दूसरों के अधिकार का हनन करना नहीं है। स्वतंत्रता शब्द का दुरुपयोग वर्तमान में बहुत किया जाता है। अनेक लोग आजकल जुलूस में निकलते, आग लगाते और अनेक वस्तुओं को ध्वस्त या विनाश करते और उसे स्वतंत्रता कहते हैं। मित्र, आप अपनी मुट्ठी को जिस दिशा में चाहें हिला डुला सकते हैं, परंतु जैसा ही वह मेरी नाक तक पहुंचती है, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। ट्रेसपास का मतलब परमेश्वर व अन्य मनुष्यों के अधिकारों पर प्रहार होता है। उदाहरण के स्वरूप देख सकते हैं, दशमांश का ईश्वर को न देना इसराइल के लिए एक ट्रेसपास था। हमारे सामने अकान का पाप है, जिसने लूट के माल, श्रापित वस्तु को लिया और यह उसके लिए पाप अर्थात ट्रेसपास गिना गया। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय के 1 पद में हम पाते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे दोष पाप स्वभाव के कारण ही पाए जाते हैं। मानव पूर्णता पतित है और ईश्वर के प्रति कुछ भी नहीं समझता। परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि वह पापी मनुष्यों के कार्यों को मंजूर नहीं करेगा और न ही उसे इनसे उद्धार मिल सकेगा। उनके काम फटी हुई धज्जियों या कपड़ों के समान है। वह धार्मिक कार्य करने से किसी को मुक्ति नहीं प्रदान करता, परंतु हमको अनुग्रह से बचाता है। बिना मोक्ष पाए व्यक्ति का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। रोमियो 8:7 में जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, धार्मिक लोग इस प्रश्न को लेकर उसके पास आए। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना 6:28-29 में प्रेरितों का उत्तर भी यही था। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16:31 में। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी रूपरेखा को देखते हैं। पहला है दोष बलि अर्थात पाप एक कार्य, अध्याय 5 उसके 1 से 6 अध्याय के 7 पद तक। इसमें हम आ देखते हैं पाप के विषय कार्य जो अनजाने में किए गए, पद 1 से 13। ब अनजाने में किए गए साधारण पाप, पद 14 से 19। स जानबूझकर किए जाने वाले विशेष अपराध, अध्याय 6 उसके 1 से 7 पद। क दोष बलि के नियम संविधान, अध्याय 7 1 से 10 पद। अज्ञानता में किए गए विशिष्ट पाप, दोषों की वह सूची जो यहां दर्शाई गई है अधिक विस्तृत नहीं है, परंतु सीमित संख्या में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम गिना सकते हैं। ये व्यक्तियों के दोष हैं, संपूर्ण मंडली के नहीं। अधिकतर भाग में उपचारों का वर्णन है, रोगों का नहीं। अतः जोर चढ़ावे के ढंग से है, न कि दोषी के चरित्र पर, जैसा पाप बलि में था। तो आइए हम लय व्यवस्था 5 अध्याय के 1 पद को पढ़ें। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। मित्रों, जिन 4 विशिष्ट दोषों का वर्णन यहाँ है वे केवल उदाहरण स्वरूप हैं। मेरा मानना है कि यदि प्रत्येक विशिष्ट दोष की सूची तैयार की जाए तो लय व्यवस्था की पूरी पुस्तक इसी से भर जाएगी। किसी प्रचारक ने ऐसे ही विशिष्ट दोषों की सूची बनाई जिसमें 800 को सम्मिलित कर सका। इतने लोग इस सूची को प्राप्त करने के इच्छुक हुए कि उसके पास पत्रों का ढेर लग गया। उनका विचार था कि कुछ दोष बाकी रह गए जिनका समावेश इन 800 में नहीं हुआ था। अच्छा, यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। यदि कोई ऐसा पाप करे कि शपथ की आवाज सुने, इसका बेहतर अनुवाद, यदि कोई व्यक्ति साक्षी देकर ऐसा पाप करता है कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी, इसका मतलब शपथ को सुनकर तब साक्षी बनना। यदि एक साक्षी ने कुछ देखा या कुछ सुना परंतु किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर सत्य को छिपा लिया, तो यह चूक व त्रुटि का पाप हुआ। मित्रों, आजकल अनेक पाप भूल चूक से होते हैं। कई लोग आज कलीसिया में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि उनके हाथ शुद्ध हैं, परंतु याकूब को सुने कि वो क्या कहता है, 4 अध्याय के 17 पद में। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की इसी विषय पर, जब कोई साक्षी जो सत्य को जानता है पर फिर भी इस मुद्दे पर सच नहीं बोलता। हम इसे पाते हैं पहला राजा 8 अध्याय उसके 31 और 32 पद में। जब कोई मनुष्य अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करेगा और पड़ोसी उसको शपथ देगा और वह तेरे इस भवन की वेदी के सन्मुख शपथ खाएगा, तब तू स्वर्ग से उसका मुकदमा सुनना और कार्य करना, प्रभु अपने सेवकों का न्याय करना, दुर्जन को दुर्जन घोषित करना और उसके आचरण का फल उसके सिर पर लौटाना, परंतु सज्जन को सज्जन सिद्ध करना और उसकी सज्जनता के अनुरूप उसे फल देना। मित्रों, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। नगर के चौराहे पर बड़ी अफवाह फैली थी। उसने बैंक मैनेजर को सड़क पार करते देखा। उसका सेक्रेटरी भी दोपहर भोजन के लिए बैंक से निकला। युवती जब सड़क पार कर रही थी तो एक मोटर गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। बैंक मैनेजर ने तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लिया और डॉक्टर के कक्ष में ले गया। टेलीफोन का गपशप, खबर इतनी तेजी से फैल गई कि किसी ने बैंक मैनेजर की पत्नी को सूचित किया, महोदया, मैंने आपके पति को किसी अन्य महिला को गोद में ले जाते हुए देखा। अब यद्यपि यह एक सच तथ्य था, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। वह महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया जा रहा था। यही चूक पाप है। मैं मसीही लोगों की एक मीटिंग में शामिल था जिसमें वे पास्टर को किसी निश्चित सूचना से अवगत कराते थे जो सत्य नहीं थी, पूरी तरह सच नहीं। वे लोगों के उस समूह को विश्वास दिलाना चाहते थे कि उन्होंने पूरी बात सुनी है। यह ट्रेसपास अपराध है। यह एक भयंकर पाप है जो किसी के द्वारा भी हो सकता है। ध्यान दें कि ईश्वर के पापियों की परेड में का पहला पाप है। नीति वचन में हम उन 7 पापों की सूची पाते हैं जिनमें झूठी जीभ भी एक है। आपको स्मरण होगा कि यीशु मसीह अपने दुख की घड़ी में चुप था। हमें ज्ञात है कि वह शांत रहा, परंतु जब उसे शपथ ग्रहण करना पड़ा, उसने अपना मुंह खोला, तब वह उन कतरने वाले भेड़ के समान शांत नहीं रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 63 और 64 पद में हम पाते हैं। कृपया ध्यान दें कि शपथ के साथ वह शांति नहीं रहा, परंतु साक्षी बनकर बोल पड़ा। उसने पूरा सच कह दिया। तब हम लय व्यवस्था 5 उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध वैनैले पशु हो, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। मित्रों, यह कानून अशुद्धता के संबंध में है। कोई व्यक्ति बिन जाने ही मृतक पशु के संपर्क में आने से अशुद्ध हो सकता था, जबकि दूसरे लोग इसके साक्षी थे। किसी मृतक पशु की लाश को छूने से व्यक्ति अशुद्ध होता था। शायद इसका मूल कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से ही हो। मसीहों पर भी यह बात आज सिद्ध होती है। हम इस संसार से अलग नहीं रह सकते और उनको छूने, देखने तथा उनकी तरह सोचने से भी अशुद्ध बनते हैं। हम भले ही यह न समझ पाए कि कैसे अपवित्र हो गए, पर अशुद्ध बातों को करने व सुनने और छूने से अशुद्ध ठहरते हैं, चाहे हमें इस बात का बोध भले ही ना हो। परंतु हमें तुरंत ईश्वर के पास जाना चाहिए जब तक कि पवित्र ना बन जाएं। इसीलिए भजनकार कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। भजन संहिता 19 उसका 12 पद। हमें न केवल सामान्य रूप से परमेश्वर से क्षमा याचना करनी है, परंतु विशिष्ट रूप से असफलताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए और अनजाने में किए गए अपराधों के लिए लगातार विनती करना चाहिए। हम लय व्यवस्था 5 के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। यह अशुद्ध पशुओं के समान ही है। तो भी ईश्वर मनुष्यों और पशुओं में अंतर करता है। इस दोष पर दंड मृतक पशु लाश को छूने से अधिक तीव्र है। लय व्यवस्था 11 अध्याय के 24 में हम पढ़ते हैं और गिनती 19 अध्याय उसके 11 से 16 पद में। इसके अतिरिक्त भी मृतक की अपेक्षा मनुष्य संबंधित अशुद्धता के अनेक प्रकार हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं लय व्यवस्था 5 के 4 पद में, लिखा है, और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। मित्रों, बिना विचार किए भला बुरा कहना अतः लापरवाही से बोलना भी दोष है। अक्सर हम कुछ करने का वायदा करते परंतु उसे पूरा नहीं करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते कि ईश्वर की सेवा करेंगे। यप्ता ने भी तुरंत वायदा किया अपनी पुत्री को चढ़ाने का। शिमोन पत्रस ने शीघ्रता से कहा, यीशु का इनकार नहीं करेगा पर उसकी सुरक्षा के लिए मर भी जाएगा। आज हम लोगों को अति शीघ्र ही वायदे करते देखते हैं। वास्तव में हमारे अनेक गाने प्रध्वंसक हैं। इन गानों के द्वारा अपना सब कुछ समर्पण करना, उसके पीछे चलना, उसके लिए मरने तक की प्रतिज्ञा करते हैं। हम उन्हें इतना सहज रूप से गाते कि समझते भी नहीं कि हम क्या गा रहे हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि यह भी लापरवाही व गृहस्थता का नमूना है। जब हम ईश्वर से तुरंत अपनी प्रार्थना का उत्तर मांगते हैं, हमें स्मरण रखना होगा कि हमारी प्रार्थना सदैव उसकी इच्छा के अनुकूल होना है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुकूल कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पता नहीं कहां से यह विचार आया कि हम जो चाहें वह ईश्वर से मांग सकते हैं। तब वह इनमें से किसी का दोषी हो। उपर्युक्त 4 चीजें गिनाई गई हैं, अनेकों और भी गिनाई जा सकती है। तब हम आगे बढ़ते हैं 5:5-6 में, जहां पर लिखा हुआ है, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। पाप अंगीकार के लिए पहली बार आदेश मिलता है कि दूसरे अनेक चढ़ावों में दोष का खुला स्वीकार कर लेना है। इसमें छिपे पापों का वर्णन है। कई ऐसे रहस्यमय पाप हो सकते हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच छिपे हुए हों। मित्रों, आपको ज्ञात है कि यहोशू 7 में जब आकान ने सोने की ईंट और बाबुल देश का सुंदर अंगरखा छिपा लिया और इसका जनता के सामने फैसला हुआ, क्योंकि एक ऐसा पाप था जो दूसरे बलिदानों के सिर पर हाथ रखना भी पापों का ही अंगीकार था। यहां चढ़ावे से पहले पापांगीकार होना आवश्यक था। सुखदायक सुगंध चढ़ाओ में किसी अंगीकार के विचार से पहले चढ़ावा सोचा जाता था। यहां इसके विपरीत सच था। मेरे विचार से पहाड़ी उपदेश में प्रभु के मन में ऐसा ही विचार था। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Matthew 5:23-24 में हम इसे पाते हैं। विश्वासी को आज व्यक्तिगत रूप से अपने पाप अंगीकार को परमेश्वर के सामने करना है, लेकिन उससे हानि उठाने वाली पार्टी को नुकसान भरना पड़ेगा। दोष बलि का अर्थ में स्वयं के दोष का चढ़ावा है। यह एक पाप बलि था क्योंकि सभी पाप की उत्पत्ति पाप स्वभाव से होती है। हम पापी इसलिए नहीं है कि पाप करते हैं, हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, अर्थात पाप का स्वभाव हमारे अंदर है और पाप के स्वभाव के कारण हम पापी हैं। क्योंकि यह पाप करने के कार्य की बलि है जो पाप स्वभाव के अनेकों चेहरों में से एक है, चढ़ावे की कीमत इतनी अधिक नहीं थी जितना 4 में पाप बलि की कीमत बताई है। तब हम 5:7 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए, उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। दोष बलि पर जोर उसके चरित्र या चढ़ावा चढ़ाने की स्थिति पर नहीं, परंतु स्वयं बलिदान पर है। केवल 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चों की जरूरत थी, एक पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व एवं कार्य इतनी छोटी बलि में दिखाई पड़ता है। यह निर्धन लोगों का चढ़ावा था। मसीह प्रभु ने निर्धनों को सुसमाचार सुनाया। ध्यान दें कि इसे पाप बलि कहा गया क्योंकि यह पाप स्वभाव से उत्पन्न है। हम लय व्यवस्था 5:8-9 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाय पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। मित्रों, रक्त बहाना चाहिए यद्यपि पक्षी का सिर उसके धड़ से अलग नहीं किया जाता है। तब हम आगे 5:10 में पढ़ते हैं, और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे और तब वह क्षमा किया जाएगा। यद्यपि इतनी छोटी चिड़िया के होते भी पापी को पाप की पूरी क्षमा प्राप्त होती है, यह सब मसीह के एक बलिदान की ओर इंगित करता है। लय व्यवस्था 5:11 में लिखा है, और यदि वह 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। निर्धनों में सबसे निर्धन को भी नहीं छोड़ना था। यदि कोई एक पक्षी भी नहीं ला सकता तो रोटी के टुकड़े के बराबर राशि की भेंट चढ़ाए, यह चढ़ावा भी उसके लिए एवजी सदृश्य था। लय व्यवस्था 5 उसके 12 और 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वह उसको याजक के पास ले जाए और याजक उसमें से अपने मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा, और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष की नाई याजक का ठहरेगा। अनजाने में किए गए पाप का अविशिष्ट कार्य। लय व्यवस्था 5 उसके 14 से 16 में हम आगे और पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। मित्रों, इन दोष बलियों में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि यहां परमेश्वर और मानव दोनों के अधिकारों पर प्रहार हुआ है। दूसरों को हानि पहुंचाने में उसके क्षतिपूर्ति की भी आवश्यकता है, पुनरुद्धार होना आवश्यक है, वह भी 5 भाग अधिक जोड़कर। जकई के मन में यही विचार होगा जब उसने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे दोगुना फेर देता हूं। लुका 19 उसके 8 पद में। मित्रों, अनजाने में किए गए पापों में सबसे मुख्य भूल परमेश्वर को उसका भाग, दशमांश और भेंट न देने में है। हम इसे मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में? तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मलाकी 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। और हम सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में भी पढ़ते हैं, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। इस प्रकार की लापरवाही ईश्वर के विरुद्ध दोष है। बलिदान बहुमूल्य होना चाहिए, एक मेढ़ा होना चाहिए, मसीह की ओर संकेत वह बहुमूल्य है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 19 पद में हम इसे पढ़ते हैं, इस बलिदान के द्वारा ही पापी मनुष्य के लिए उन सभी पापों की क्षमा उपलब्ध है जो उसने अनजाने में किए हैं। मित्रों, हम लय व्यवस्था 5 उसके 17 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। सब कुछ जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है और अनजाने में किया गया, नियमों की आज्ञानता से क्षमा नहीं मिल सकती। राजकीय कानून में भी यह सत्य है, आज्ञाओं के ज्ञान की कमी के बजाय बलि चढ़ाने वाला दोषी था और दंड का भोगी भी। यहां पुनः केवल मेढ़ा ही ऐसा जानवर है जो दोष बलि के चढ़ावे में दिया गया है। मित्रों, दोष बलि का नियम अध्याय 7 उसके 1 से 10 पद में हम पाते हैं, अपने अनुष्ठान की ढंग या पद्धति में यह चढ़ावा भी पाप बलि के नमूने पर है, केवल लहू के छिड़काव को छोड़कर, जिसका अनुकरण होम बलि और मेल बलि के नमूने पर है। अध्याय 7 में हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात उन नई बातों को सीख रहे हैं जिसे शायद आपने कभी नहीं सोचा। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें और परमेश्वर के वचन से वाकिफ होते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
Send.